समिति और संस्था में अंतर। नंबर वन, समिति। समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह है। नंबर वन, संस्था। संस्था नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है। समिति। नंबर टू, व्यक्तियों के समूह के रूप में समिति को देखा जा सकता है, अतः यह अमूर्त है। संस्था। नंबर दो, संस्था अमूर्त है क्योंकि यह नियमों, कार्यप्रणाली आदि की व्यवस्था है जिसे देखा नहीं जा सकता। समिति। नंबर तीन, समिति स्थापित की जाती है, यह बताया जा सकता है कि किस समिति की स्थापना किसने की। संस्था। नंबर तीन, संस्था का धीरे धीरे स्वागत स्वतः ही विकास होता है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी कब किसने उत्पत्ति की या विकास किया। समिति। नंबर फोर, समिति अस्थाई होती है। संस्था अपेक्षाकृत अस्थाई होती है। समिति। नंबर फाइव, समिति का अपना एक नाम होता है। संस्था। नंबर फाइव, संस्था का अपना एक प्रतीक होता है, जैसे चर्च का प्रतीक क्रॉस तथा किसी शिक्षण संस्था का जलती हुई मशाल। समिति। नंबर छः, समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है। संस्था। नंबर छः, संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। समिति। नंबर सेवन, समिति के कुछ औपचारिक नियम होते हैं जो साधारणतः लिखित रूप में होते हैं। संस्था। नंबर सेवन, संस्था के अलिखित अनौपचारिक नियम जनरीतियों, प्रथाओं, परंपराओं और रूढ़ियों के रूप में होते हैं। समिति। नंबर एट, समिति की नियंत्रण शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर या शिथिल होती है। संस्था। नंबर एट, संस्था की नियंत्रण शक्ति अधिक होती है। संस्था द्वारा मान्य रीति नीति के विरुद्ध आचरण करना अनुचित और असामाजिक समझा जाता है। समिति। नंबर नाइन, समिति विशेष हितों या उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संस्था। नंबर नाइन, संस्था सामान्यतः मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देती है, जैसे यौन, संतानोत्पत्ति, भोजन आदि। समिति। नंबर टेन, हितों की भिन्नता के कारण समितियों के कई प्रकार पाए जाते हैं। समिति के हितों की पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार की संस्था का होना आवश्यक है। संस्था। नंबर तीन, संस्थाएं विभिन्न समितियों के हितों की पूर्ति हेतु साधन के रूप में कार्य करती हैं। समिति। नंबर ग्यारह, समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित नहीं होती है। और संस्था। नंबर ग्यारह, संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। समिति। नंबर बारह, मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं। और संस्था। नंबर बारह, मनुष्य संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते क्योंकि संस्था नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। इस प्रकार समिति और संस्था दोनों ही अपने आप में साध्य नहीं होकर मानवीय हितों या उद्देश्यों की पूर्ति के माध्यम या साधन हैं। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। समिति और संस्था के उपयुक्त विवेचन से यह भली भांति स्पष्ट है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं के। इस संबंध में भ्रम का मूल कारण यह है कि समिति और संस्था शब्दों का साधारणतः पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्री शब्दावली से समिति और संस्था का भिन्न भिन्न अर्थ है, जैसा कि इनकी परिभाषाओं से स्पष्ट है। इन दोनों के अर्थ और विशेषताओं पर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक विचार करने से भ्रम का निवारण स्वतः ही हो जाता है। फिर भी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यहाँ उपयुक्त कथन को प्रमाणित करने की दृष्टि से कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। मैकाइवर एवं पेज के इस कथन से कि हम समितियों के सदस्य होते हैं न कि संस्थाओं के, लेखक पूरी तरह सहमत है। समिति से मनुष्यों के एक संगठित समूह का बोध होता है, जबकि संस्था से एक कार्य प्रणाली का। परिवार, महाविद्यालय, धार्मिक संगठन, राजनीतिक दल आदि व्यक्तियों के समूह के रूप में समितियां हैं और नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों के ढांचे के रूप में संस्थाएं। जब समितियां बनाई जाती हैं तो उनके कार्य संचालन के लिए कुछ नियम, विधि विधान और कार्य प्रणालियां भी विकसित हो जाती हैं, जो संस्थाओं के नाम से जानी जाती हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार यदि हम किसी व्यवस्था पर संगठित समूह के रूप में विचार करते हैं तो वह एक समिति है और यदि कार्य प्रणाली के रूप में तो वह संस्था है। समिति से सदस्यता का पता चलता है, संस्था से कार्य प्रणाली या सेवा के तरीके या साधन का। हम यहाँ कुछ उदाहरणों द्वारा उपयुक्त कथन को स्पष्टतः समझने का प्रयत्न करेंगे। महाविद्यालय एक समिति और संस्था दोनों ही है। जब हम महाविद्यालय पर एक संगठित समूह के रूप में विचार करते हैं, अर्थात प्राचार्य, विभागाध्यक्षों, प्राध्यापकों, अन्य कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की दृष्टि से सोचते हैं, तो यह एक समिति है जिसके कुछ उद्देश्य हैं। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महाविद्यालय की शिक्षण की एक पद्धति, टाइम टेबल, नियम एवं आचरण संबंधी बातें तथा परीक्षा की एक प्रणाली आदि होते हैं। ये सब मिलकर महाविद्यालय को एक संस्था का रूप प्रदान करते हैं। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब हम महाविद्यालय पर नियमों, कार्यप्रणाली अथवा कार्य के ढंग, शिक्षण पद्धति, परीक्षा प्रणाली आदि के रूप में विचार करते हैं, तो वह एक संस्था है। स्पष्ट है कि समिति मनुष्यों का एक संगठित समूह है, जबकि संस्था नियमों एवं कार्यप्रणाली की एक व्यवस्था। हम मनुष्यों के समूह के ही सदस्य हो सकते हैं, नियमों एवं कार्यप्रणाली की व्यवस्था के नहीं। महाविद्यालय के जैसे ही परिवार, आर्थिक संघ, धार्मिक संघ, राजनीतिक दल, राज्य, अस्पताल, लोकसभा आदि में से प्रत्येक समिति और संस्था दोनों ही हैं। ये सब संगठित समूह भी हैं और इनके सबके अपने अपने नियम, विधि विधान एवं कार्य प्रणालियाँ भी हैं। संगठित समूह के रूप में इनमें से प्रत्येक समिति है और नियमों व कार्य प्रणाली की व्यवस्था के रूप में संस्था। हम समिति, संगठित समूह के सदस्य तो हो सकते हैं और होते हैं, परंतु नियमों एवं कार्य प्रणाली की व्यवस्था संस्था की नहीं। इस प्रकार स्पष्ट है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं।